नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चिकित्सा शिक्षा विभाग रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के जिला अस्पतालों का संचालन करेगा, आदेश जारी। प्रदेश सरकार की खनन आवंटन और खनन परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डेढ़ साल से कम समय में खनन राजस्व में 4 गुना वृद्धि हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मासिक धर्म स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार, राज्यों को विद्यालयों में छात्राओं को निशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश। और चंपावत में शासकीय कार्मिकों के लिए 3 दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने बेहतर और सुचारू संचालन के लिए राज्य के रुद्रपुर और पिथौरागढ़ स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव सचिन कुर्वे की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
आदेश के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर के संचालन के लिए जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय रुद्रपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के संचालन के लिए बीडी पांडे जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ को चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है। अब तक दोनों चिकित्सालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित हो रहे थे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हस्तांतरण के बाद इन अस्पतालों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अथवा निदेशक के अधीन रहेगा। साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुरूप आवश्यक उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। वहीं इन अस्पतालों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान 1 वर्ष की अवधि तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद इन चिकित्सा इकाइयों का संचालन पूरी तरह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन होगा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह।
प्रदेश सरकार की खनन आवंटन और खनन परिवहन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ ही अवैध खनन पर सख्ती के परिणाम स्वरूप डेढ़ साल से कम समय में खनन राजस्व में 4 गुना वृद्धि हुई है। इस अवधि में खनन राजस्व 300 करोड़ से 1200 करोड़ के पार पहुंच गया है। राज्य सरकार ने सितंबर 2024 को नई खनन नीति लागू की थी। नई खनन नीति में ई नीलामी के जरिए खनन लॉट आवंटन और खनन गतिविधियों की सैटेलाइट निगरानी जैसे कई नए प्रयोग किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस शासन को भी अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश दिए। सितंबर 2024 से पहले राज्य को खनन से सिर्फ 300 करोड़ रुपए तक ही सालाना राजस्व प्राप्त हो पाता था, लेकिन अब ये राजस्व 1200 करोड़ के पार चला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को आवासीय या अन्य निर्माण के लिए खनन सामग्री की आवश्यकता होती है, साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भी खनन की आवश्यकता है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि खनन पर्यावरण के मानकों के अनुसार हो, साथ ही इसके लिए पारदर्शी तंत्र विकसित किया गया जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाकर समिति के अधीन आने वाले प्रदेश के सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध करने जा रही है। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद का हवाला देकर इस फैसले को सही बताया है।
संविधान जो हमें बताता है आर्टिकल 25 के 2AB में और आर्टिकल 26 में, धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे धाम हैं और जो वहां पर हिंदू की जो डेफिनेशन है, गैर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन में जो हमारे सिख समाज और बुद्धिस्ट और हमारे जैन समाज, ये सभी हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी, सभी लोगों की ये मांग उठी है। गंगा सभा ने इस मांग को उठाया था क्योंकि अर्धकुंभ जो है कि प्रारंभ होने जा रहा है, जो हर की पौड़ी का क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने कहा कि वहां पर गैर हिंदुओं का बंद होना चाहिए। उसके बाद यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी धामों से बद्री केदार मंदिर समिति ने भी, जो हमारे 47 हमारे मंदिर हैं अधिष्ठान में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन, सभी मंदिरों पर हम जो है कि गैर हिंदुओं को जो है प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। इस पर आगामी आने वाली जो बोर्ड की बैठक है, उस बैठक में ये प्रस्ताव आने वाला है और उस प्रस्ताव को लेकर फिर सरकार और शासन को हम इसको अवगत करें।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मासिक चक्र जीने के अधिकार और निजता के अधिकार का आंतरिक अंग है। एक रिपोर्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने लड़कियों और महिलाओं की प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विद्यालयों को कई निर्देश दिए हैं। शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए निशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने एक याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हों। न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी सभी तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए इस आदेश का पालन करना अनिवार्य हो।
चंपावत जिले के गोरलचौड़ मैदान स्थित ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के कार्मिकों ने भाग लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने शासकीय कार्मिकों को सेवा नियमों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और व्यवहारिक पहलुओं की बारीकी से जानकारी दी ताकि उनकी प्रशासनिक दक्षता और लैंगिक संवेदनशीलता में वृद्धि हो सके। अकादमी के उपनिदेशक सुधीर कुमार ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से कार्मिक अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकेंगे।
सभी जनपदों में आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद चंपावत में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमने वेतन निर्धारण, जेंडर इश्यूज एंड पॉस एक्ट ऑफिस मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर फ्रॉड पे हुआ था। इसमें कुल लगभग एज एन एवरेज देखे तो 80 कार्मिकों के द्वारा प्रतिदिन प्रतिभाग किया गया है।
कार्मिक नरेंद्र चंद ने बताया कि प्रशिक्षण में मिली महत्वपूर्ण जानकारियां भविष्य में कार्मिकों की कार्य कुशलता के लिए सहायक सिद्ध होंगी।
एटीआई नैनीताल के द्वारा जो है जनपद बौद्ध में ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया है, जिसमें जो है साइबर सिक्योरिटी, ऑफिस मैनेजमेंट और आरटीआई एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और ये जो है हमारे कार्मिकों और अधिकारियों के लिए मतलब जो है एक अच्छी इसमें लाभकारी योजनाएं हैं जो हमको बताई गई है।
हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कांवड़ पट्टी मार्ग सिंहद्वार से पुल, जटवाड़ा की ओर पर चल रही सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बेहतर साफ सफाई के साथ कई जगह पर बाउंड्री वॉल और मार्ग क्षतिग्रस्त को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ पटरी मार्ग एक वैकल्पिक मार्ग भी है जिससे श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। उन्होंने सिंहद्वार पुल के आसपास अतिक्रमण कर लगाई गई फड़, ठेली और अस्थायी दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई अभियान में किसी भी प्रकार से कोई स्थिरता न बरती जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा शिक्षा विभाग रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के जिला अस्पतालों का संचालन करेगा, आदेश जारी। प्रदेश सरकार की खनन आवंटन और खनन परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 1.5 साल से कम समय में खनन राजस्व में 4 गुना वृद्धि हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मासिक धर्म स्वास्थ्य संवैधानिक मौलिक अधिकार, राज्यों को विद्यालयों में छात्राओं को निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश। और चंपावत में शासकीय कार्मिकों के लिए 3 दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।